अध्याय दो, अंत का समय। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। वर्तमान समय के शीघ्र पूरे होने वाले चिन्ह घोषणा कर रहे हैं कि मसीह का आगमन निकट है। जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये गंभीर तथा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का आत्मा क्रमशः परंतु निश्चयतः पृथ्वी से उठता जा रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानने वालों पर महामारी तथा ईश्वरीय प्रकोप पहले ही टूट रहे हैं। जल व थल में क्लेश, समाज की अस्थिर दशा, युद्ध का भय आदि शकुन सूचक हैं। ये आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को पहले ही से बता रही हैं। दुष्टता के कारिंदे अपनी सेनाओं को संयुक्त तथा सुदृढ़ कर रहे हैं। वे अंतिम महान संकट काल के लिए सुदृढ़ होती जा रही हैं। हमारी पृथ्वी में शीघ्र ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और अंतिम प्रगतियां शीघ्रगामी होंगी। संसार की घटनाओं की हालत को देखकर पता चलता है कि दुखदाई समय हमारे ऊपर आ गए हैं। दैनिक समाचार पत्र ऐसी सूचना देते हैं कि भविष्य में भयानक संघर्ष होने वाला है। भयंकर डकैतियां धड़ाधड़ हो रही हैं। हड़ताल तो आम बात है। चारों ओर चोरियां तथा हत्याएं की जा रही हैं। भूतग्रस्त मनुष्य, पुरुष, स्त्री तथा बालकों के प्राण ले रहे हैं। मनुष्य बुराई के पीछे दीवाने हो रहे हैं, इसलिए हर प्रकार की दुष्टता फैल रही है। शत्रु न्याय को भ्रष्ट कराने और लोगों के हृदयों को स्वार्थ पूर्ति और स्वलाभ की अभिलाषा से भरने में सफल हुआ है। न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। यशाया 59:14। बड़े बड़े शहरों में मनुष्यों के समूह दरिद्रता तथा दुर्दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि भोजन, आश्रय तथा वस्त्र से लाचार हैं। जिस हाल की उन्हीं नगरों में ऐसे लोग हैं जिनके पास इच्छा से भी अत्यधिक हैं, जो भोग विलास में रहते हैं और अपने धन को सुसज्जित घरों, व्यक्तिगत श्रृंगारों और इससे निकृष्ट कार्यों पर खर्च करते हैं, जैसे भोगविलास संबंधी शुधाओं की तृप्ति, मद्यपान, धूम्रपान तथा अन्य वस्तुओं पर जो मानसिक शक्तियों का हनन करती हैं, मस्तिष्क का संतुलन खो देती तथा आत्मा को अधम बना डालती हैं। जबकि अंधेरे व लूट खसोट द्वारा लोग असंख्य धन एकत्र कर रहे हैं। भूख ग्रासित मानव की पुकार परमेश्वर के सामने पहुंच रही है। रात के दर्शन में मुझे कहा गया कि उन इमारतों को देखो जो मंजिल पर मंजिल आकाश को उठती जा रही हैं। ये मकानात आग से सुरक्षित घोषित किए गए हैं और ये मालिक मकान व बनवाने वाले की प्रतिष्ठा के लिए बने थे। ये इमारतें ऊंचाई पर उठती जाती थीं, जिनमें सबसे कीमती माल लगाया गया था। जो इन मकानों के मालिक थे उन्होंने ये प्रश्न अपने से नहीं पूछा, हम परमेश्वर की महिमा उत्तम रीति से कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर तो उनके सोच में था ही नहीं। जब ये ऊंची इमारतें उठ रही थीं, मालिकों का मन हर्ष के मारे फूला न समाता था कि हम अपने धन को आत्मतृप्ति तथा पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़काने में उपयोग कर सकते हैं। जो रुपया उन्होंने लगाया उसका अधिकांश भाग दूसरों का गला घोटकर तथा गरीबों का लोहू चूसकर प्राप्त किया गया था। वे भूल गए कि स्वर्ग में प्रत्येक उद्योग संबंधी कार्यवाही का हिसाब रखा जाता है। प्रत्येक अनुचित लेनदेन, प्रत्येक धोखाबाजी के कार्य का उल्लेख किया जाता है। दूसरा दृश्य जो मेरे सामने आया आग लगने की भयातुर ध्वनि के विषय में था। लोग उन शानदार तथा कथित अग्निरक्षक इमारतों की ओर देखकर कहने लगे, ये तो खतरे से सुरक्षित हैं। परंतु ये इमारतें ऐसी भस्म हुईं मानो वे राल की बनी हों। दमकल आग को बुझाने में असमर्थ रहे। रक्षक दल इंजनों को प्रयोग करने में अयोग्य रहे। मुझे आदेश मिला कि जब प्रभु का समय आएगा उस समय तक यदि घमंडी, अभिलाषी मनुष्य के हृदय में कोई परिवर्तन न हुआ तो उनको पता लग जाएगा कि वह हाथ जो उनको बचाने में समर्थ था नाश करने को भी समर्थ है। किसी पार्थिव शक्ति की क्या मजाल जो परमेश्वर के हाथ को रोक सके। तो उस समय इमारतों के तैयार करने में कोई सामान ऐसा नहीं जो उनको सुरक्षित रख सके, जब परमेश्वर उनकी स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं के लिए दंड दे। विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में थोड़े ही हैं जो समाज की वर्तमान दशा के बुनियादी कारणों को समझते हैं। जो अपने हाथ में शासन की बागडोर लिए हुए हैं वे भ्रष्टाचार, दरिद्रता, भिक्षावृत्ति तथा अपराधों की वृद्धि की समस्या को सुलझाने में अयोग्य हैं। व्यवसाय को सुरक्षित बुनियाद पर रखने के लिए वे व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। यदि मानव परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते तो वे उन जटिल समस्याओं को सुलझाने का एक उत्तर पा लेते जो उनको व्याकुल करती हैं। यीशु के द्वितीय आगमन से थोड़ा पहले संसार की हालत का वर्णन पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। उन लोगों के विषय में जो डकैती तथा लूट खसोट से धन उपार्जन कर रहे हैं यह उल्लेख आया है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो धोखा देकर तुमने रख ली है चिल्ला रही, और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। याकूब 5:3-6। परंतु वर्तमान समय के चिन्हों को शीघ्र पूर्ण होते देख कौन उनकी चेतावनी को पढ़ता है? सांसारिक लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन नजर आता है? नूह के काल के लोगों से कोई अधिक प्रभाव नहीं मालूम होता। सांसारिक व्यवसाय व भोग विलास में फंसकर जल प्रलय के पूर्व के लोगों ने, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र को आना भी होगा। मत्ती 24:39। उनके पास स्वर प्रदत्त चेतावनियां थीं, पर उन्होंने सुनने से इनकार किया। आज भी दुनिया परमेश्वर की आवाज की चेतावनियों की परवाह न करते हुए अनंत विनाश की ओर दौड़ी चली जा रही है। युद्ध की भावना से दुनिया में हलचल मची हुई है। दानियेल नबी की पुस्तक के 11वें अध्याय की भविष्यद्वाणी प्रायः पूर्णतः को पहुंच चुकी है। क्लेश के दृश्य जो नबूवत में दिए हुए हैं शीघ्र ही घटित होंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था उल्लंघन किया है और विधि को पलेट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। यशाया 24:1-8। मैंने पृथ्वी पर देखा कि वह सूनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रहे हैं, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही हैं। फिर मैं क्या देखता हूं कि कोई मनुष्य भी नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर क्या देखता हूं कि उपजाऊ देश जंगल हो गया, और यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं। यिर्मयाह 4:23-26। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय तो होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह 30:7। इस संसार में सारे लोग परमेश्वर के शत्रु के साथ नहीं हो लिए हैं, सबके सब अनाज्ञाकारी नहीं हुए हैं। थोड़े से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि यूहन्ना लिखता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशितवाक्य 14:12। शीघ्र ही परमेश्वर की सेवा करनेहारों और न करनेहारों के बीच घमासान का युद्ध होगा। शीघ्र ही वे वस्तुएं जो हिलाई जा सकती हैं हिलाई जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिल नहीं सकती स्थिर रह सकें।
शैतान बाइबल का परिश्रमी विद्यार्थी है। वह जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है, इसलिए वह प्रत्येक बात में परमेश्वर के काम का विरोध करता है। जब स्वर्गीय महिमा और प्राचीन काल क्लेशों की घटनाएं एक साथ घटेंगी, तो उस समय परमेश्वर के लोग जिन अनुभवों में से होकर गुजरेंगे उसका अनुमान करना असंभव है। वे परमेश्वर के सिंहासन से चमकती हुई ज्योति में चलेंगे। दूतों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में निरंतर संपर्क बना रहेगा। शैतान दुष्ट दूतों से घिरा हुआ परमेश्वर होने का दावा करेगा और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म दिखाएगा, और यदि हो सके तो चुने हुओं को धोखा देगा।
परमेश्वर के लोग आश्चर्य कर्म करने के द्वारा अपने को सुरक्षित न पावेंगे, क्योंकि शैतान उन अद्भुत कार्यों की नकल करके धोखा देगा। परमेश्वर के अनुभवी तथा परखे हुए लोग, निर्गमन 31 आयत 12 से 17 में वर्णित चिन्ह में शक्ति प्राप्त करेंगे। लिखा है, उनको इसी जीवन वचन पर स्थिर रहना होगा। यही एक नींव है जिस पर वे सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ डाला है, वे उस दिन बिना परमेश्वर और बिना आशा के होंगे। परमेश्वर के भक्तों की विशेष पहचान यह होगी कि वे चौथी आज्ञा का आदर करते हैं, क्योंकि यह उसकी सृजनात्मक शक्ति का चिन्ह और मानव की उपासना तथा भक्ति पर उसके दावे की साक्षी है। दुष्टों की पहचान यह होगी कि वे अपने परिश्रम के स्मारक को गिरा देंगे और रोम के द्वारा स्थापित दिन को समुन्नत करेंगे। इस संघर्ष के दरमियान मसीही दो बड़ी श्रेणियों में बंट जाएंगे। एक वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, दूसरे वे जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसकी छाप लेते हैं। यद्यपि कलीसिया व सरकार अपनी संयुक्त शक्ति द्वारा सबों को छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी, प्रकाशित वाक्य 13 आयत 16, पटमस के नबी ने, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणायों को लिए हुए खड़े देखा और मूसा और मेमने का गीत देखा, प्रकाशित वाक्य 15 आयत 2-3। परमेश्वर के लोगों पर भयंकर परीक्षाएं और क्लेश आने वाले हैं। युद्ध की भावना राष्ट्रों को पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक उभार रही है, परंतु आने वाले संकट के बीच, ऐसे संकट का समय जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर तब लोग कभी न हुआ होगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग अटल खड़े रहेंगे। शैतान और उसकी सेना उनको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि स्वर्गदूत जो प्रबल शक्ति रखते हैं उनकी रक्षा करेंगे।